ஹரிஹந்தாணம் ணமோ சித்தாணம் ணமோ ஆயிரியாணம் ணமோ வஜாயாணம் ணமோ லோயே சௌகாவுணம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோகணி மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணகாரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா ச காசதே சித்ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தரச்சிதே சர்வ பாவாந்தரச்சிதே.
ஆச்சாரிய குந்த குந்த சுவாமி கி யஹ அனுபம் ரச்சனா சமயசார நாமக கிரந்த ஹை. பரத் க்ஷேத்ர கே அபாகிய ஜீவோ கே லியே மானோ ரேகிஸ்தான் மே பர்சாத் கர்னே கா காம் கியா ஹோ. साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का यहाँ विरह है, लेकिन मानो तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को भुला दिया हो. वेद ज्ञान की उत्कृष्टतम चर्चा, आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयोजनभूत बात जैसी यहाँ की गई है, वैसी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है. कहीं कहीं तो वस्तु स्वरूप को भी प्रयोजन की दृष्टि से अलग रूप से प्रस्तुत किया है. जिन गाथाओं की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, ये गाथाएं भी कुछ इसी प्रकार की है, जो वस्तु स्वरूप को अलग ढंग से प्रतिपादित करने वाली है. यद्यपि यह परम सत्य है कि आत्मा के जिन प्रदेशों में ज्ञान उत्पन्न होता है, उन्हीं प्रदेशों में क्रोधादिक भी उत्पन्न होते हैं. वस्तु स्थिति की दृष्टि से देखा जाए, वस्तुतः बात करें, तो यही बात कही जाएगी कि ज्ञान के प्रदेश और क्रोध के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है. आत्मा की अपेक्षा से यदि हम बात करेंगे तो, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रयोजन बतलाना है, इसलिए प्रयोजन की दृष्टि से, श्रद्धान की दृष्टि से, जिस त्रिकाली ध्रुव गया भगवान आत्मा का श्रद्धान कराना है, उस ज्ञायक भगवान आत्मा में विकार का प्रवेश नहीं है. विकार बाहर है और स्वभाव अंदर है, ऐसा भेद विज्ञानी यहाँ संवर अधिकार में कराते हैं. बात ऐसी है कि सुन करके श्रद्धान करो और अनुभव हो जाए. अनुभव नहीं किया इस जीव ने आज तक अनादिकाल से, बाकी सब काम किया, और कैसे होगा अनुभव? कोई आचार्य कुंद कुंद के शब्दों से तो अनुभव होता नहीं है, न अमृत चंद्र के शब्दों से अनुभव होता है, न श्रीमद जी के शब्दों से, न गुरुदेव के शब्दों से. शब्द तो शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों को सुनकर जब ये जीव अपने हृदय में श्रद्धान करता है, तो वे शब्द इस जीव के श्रद्धान में निमित्त बनते हैं. ऐसा कह सकता हूँ मैं कि जो अधिगमत सम्यक दर्शन कहा है, वो वास्तव में सम्यक दर्शन है ही नहीं. क्या कहा? क्योंकि अधिगमत सम्यक दर्शन में उपदेश की मुख्यता से बात कर रहे हो. उपदेश किसका? कि दूसरे व्यक्ति का. अब दूसरा व्यक्ति अपने से भिन्न है, एक चीज, उसकी वाणी का अपने से कोई संबंध नहीं है. दूसरा व्यक्ति हमें छूता नहीं है, उसकी वाणी भाषा वर्गना पुद्गल है, और हम कहें कि दूसरे के उपदेश से सम्यक दर्शन हो गया, कि कितनी स्थूल बात हो गई. दूसरे के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे समझ लो आपने कोई चीज खाई और हमने कहा कि मिर्च बहुत तेज लग रही है मेरे को, कि क्यों, तुमने तो खाई नहीं. कि नहीं नहीं उन्होंने खाई ना. ये कैसे होगा बताओ? दो वस्तुएं बिल्कुल नहरी नहरी है, क्षेत्र उनका बिल्कुल भिन्न है, प्रदेश उनके भिन्न है, उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति अधिगमत सम्यक दर्शन पूर्वक कहना ये इसी तरह का कथन है। इतना स्थूल उपचार है, बहुत दूर का आसमान में बादल हो रहे थे और बादलों के निमित्त से पेट में दर्द हुआ, मैं इतना दूर का उपचार। अधिगमत सम्यक दर्शन की बात कहता हूँ। मुनिराजों का उपदेश सुनकर के शेर के जीव को सम्यक दर्शन हो गया। मुनिराजों ने उपदेश दिया और शेर के जीव को सम्यक दर्शन हो गया। ये भाई साहब, ये सच्चा जैन धर्म नहीं है। सच्चा जैन धर्म नहीं हो सकता क्योंकि उपदेश दाता मुनिराज किसी को सम्यक दृष्टि बना नहीं सकते। इस जीव को सम्यक दर्शन परोपदेश से नहीं होता, इस जीव को सम्यक दर्शन स्वभाव दर्शन से होता है। दूसरा, कितना उपदेश दे दे, कितना समझाए, इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, बोले कभी नहीं। आचार्य कुंद स्वामी कहे कि अरे पिछले 2000 वर्षों में मैंने सैकड़ों लोगों को सम्यक दृष्टि बनाया है। शाह साहब क्या बात करते हो आप, मेरी वाणी को सुनकर के बहुत सम्यक दृष्टि हो गए, आप चिंता नहीं करो, आप लोगों को भी सम्यक दृष्टि बना दूंगा। तो वे आचार्य आचार्य नहीं है, ये उनकी मुनि भूमिका नहीं होगी। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता माने तो जैन पना संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि ही सच्चा जैन है और मिथ्या दृष्टि तो जैन है ही नहीं। आप कहोगे व्यवहार से तो जैन कह दो कि जिसके जीवन में निश्चय नहीं उसको व्यवहार कैसे कहें। तो आचार्य कुंद की गाथाएं यद्यपि पर है, भिन्न है, पौद्गलिक वर्गणाओं रूप है, तथापि उन शब्दों को सुनकर जब यह जीव अपने स्वभाव का अनुभव करता है, अपने स्वभाव का लक्ष्य लेता है, करता है, तो सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति हुए बिना नहीं लेती। अपने अंदर में अनंत आनंद, अतिंद्रिय आनंद, विशेष अद्भुत सुख भरा हुआ है, उस आनंद की खबर नहीं है। ये भेद विज्ञान के माध्यम से वो कला सिखा रहे हैं हमारे को, अनुभव कैसे करो, अनुभव करने की कला सिखा रहे हैं। संवर अधिकार है, प्रारंभिक गाथाएं हैं, प्रदेश भिन्नता की चर्चा विगत 5-6 दिनों में हम कर चुके हैं कि किस तरह से दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न होते हैं, आत्मा के प्रदेश भिन्न और क्रोध के प्रदेश भिन्न। और गजब बात कहूं आपको, ये प्रदेश भिन्न माने विकार और निर्विकार स्वभाव, एक विकारी है और एक निर्विकारी है, तो बोलो आप प्रदेश भेद है या नहीं। एक पर्याय के दो अंश, अब उनको भिन्न कहना के नहीं कहना। हमारे सर का एक बाल और एक बाल के दो मुंह, अब ये दो बाल है कि नहीं है, कि दो मुंह दिखते हुए भी वे दो बाल नहीं है क्योंकि उनकी जड़ एक है। यहां से निकला है ना, वो एक है इसलिए दो नहीं है, क्योंकि दो रूपों में उसे देखा जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं चारित्र नाम का एक गुण, आत्मा के अनंत गुणों में एक चारित्र नाम का गुण, उस चारित्र नामक गुण के वीतरागता और राग, ये दो भिन्न भिन्न पर्याय नहीं। ये दो भिन्न भिन्न पर्याय तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और केवल ज्ञानी इनकी अपेक्षा से है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के राग रूप पर्याय, क्रोध रूप पर्याय, विकार रूप पर्याय है, और केवल ज्ञानी परमात्माओं के या 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती या गुणस्थानाति सिद्ध भगवान के चारित्र गुण की एक ही पर्याय है, उसका नाम है वीतरागता। अब हमें ये कहना है छद्मस्त ज्ञानियों की बात करो, 4थे से 10वें गुणस्थान तक की बात करो, चारित्र गुण की कौन सी पर्याय है बताओ। विकार के वीतराग, विकार है, वीतरागता भी है, तो चारित्र गुण की दो पर्याय होती है क्या? एक गुण की तो एक ही पर्याय होगी, एक समय में एक गुण की दो अवस्था नहीं हो सकती, तो फिर वीतराग भी है और राग भी है क्या? ये कैसे हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ परिणति में भी विरक्त है, मान लो तो परिणति में राग भी तो है कि नहीं। परिणति में राग कहाँ, परिणति में तो शुद्ध शुद्ध परिणति कहते हैं तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति मुनि राजों के, दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति पंचम गुण स्थानवर्ती के, एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति चौथे गुण स्थानवर्ती के। और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परिणति निर्जरा का कारण बनती है, शुद्धोपयोग नहीं। जानते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है और वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव अपनी पत्नी के साथ में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, बिजनेस करता है, कर रहा है। और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोग है, आत्मा का अनुभव है, फिर भी निर्जरा किसके ज्यादा है। वो व्यापार कर रहा है और इसका आत्मा का अनुभव है चौथे वाले के, फिर भी निर्जरा किसके, बोले पांचवे वाले के। कारण क्या, दो चौकड़ी के अभाव में वर्तने वाली शुद्ध परिणति, उस शुद्ध परिणति के कारण निर्जरा है। ये शुद्ध परिणति क्या चीज होती है कि शुद्धोपयोग होने पर अंदर में जो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और उस कषाय चौकड़ी का अभाव मेंटेन रहने से अंदर में जितना विकार चला गया, उतनी निर्मलता के मेंटेन रहने से जो पवित्रता है, उस पवित्रता का नाम कहेंगे हम शुद्ध परिणति। अब मुझे दूसरी बात कहनी है, मुझे ये कहना है कि यदि दो कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति है तो शुद्धोपयोग के काल में दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव में अशुद्ध परिणति होनी चाहिए ना। वापस सुनो, चार कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, बराबर। इन चार में से दो के अभाव को देख रहे हो आप, तो दो के अभाव को देखा तो क्या शुद्ध परिणति, तो ये दोनों मौजूद तो हैं, तो इन दोनों के सद्भाव में अशुद्ध परिणति क्यों नहीं है। यदि व्यापार के काल में इन दोनों का अभाव है और आप कह रहे हो अभाव की वजह से निर्मलता है और शुद्ध परिणति है, तो मैं कहता हूँ शुद्धोपयोग के काल में भी इन दोनों का सद्भाव है और उसके कारण अशुद्ध परिणति भी वही कायम है। दो के अभाव में शुद्ध परिणति और दो के सद्भाव में अशुद्ध परिणति, चार कषाय है, चारों का हिसाब करना पड़ेगा आपको। विकार भी है और निर्विकार भी है और दोनों एक ही पर्याय में है, चारित्र गुण की पर्याय में, एक ही चारित्र गुण की पर्याय के दो अंश हैं, ये मान लो आप, वितरागता और सरागता, एक पर्याय के दो अंश मानने पड़ेंगे तब छद्मस्थ दशा बनेगी, नहीं तो छद्मस्थ दशा बनती नहीं। छद्मस्थ वितरागियों की बात करता हूँ, चौथे से दसवें गुणस्थानवर्तियों की, फिर आप ग्यारहवें बारहवें वाले तो वितरागी हैं, वहाँ अशुद्धता नहीं है, वहाँ विकार नहीं है, इसलिए चौथे से दसवें तक की ही बात करता हूँ। करो भेद विज्ञान, उस विकार के काल में भी वो विकार न्यारा और निर्विकार स्वभाव न्यारा, उस एक बाल में से जो जड़ एक है, जो दो मुंह दिखाई दे रहे हैं उसमें दोनों भिन्न भिन्न है, मूल एक थी, बाल मूल में एक है, तो चार त्रिगुण की पर्याय मूल में एक है और उसके भाग दो हैं। तो साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रत्येक पर्याय के अपने निजी अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद के बारे में सुना आपने? नहीं सुना। अविभागी प्रतिच्छेद के ऊपर तो एक शक्ति का अंश, अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति का अंश, मेरा तो स्वतंत्र प्रवचन था अविभागी प्रतिच्छेद के ऊपर, शायद पहले दिया होगा रिकॉर्डिंग आपको। क्या है उस शक्ति के अंश में, क्या बात कहना चाहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद में, एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग कैसे है ये बताओ। एक पर्याय का विषय अलग और दूसरी पर्याय का विषय अलग, ये दो अलग अलग बातें कैसे है, ये बात समझ में नहीं आती हमारे, कैसे होगा। ज्ञान गुण एक, एक पर्याय निकली हमारी, अभी दो सेकंड बाद में दूसरी पर्याय निकली, कि दोनों पर्याय अलग अलग क्यों हैं?
ज्यादा
हाँ हाँ इसी 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 तरह का कुछ है हर समय की ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है एक तरीकी नहीं है और उसकी स्वतंत्रता अविभागी प्रतिच्छेदों की प्रकटता पर निर्भर करती है। हर समय की ज्ञान की पर्याय अलग अलग कैसे है तो हो सकता है आप ये बात कहें प्रति समय की ज्ञान की पर्याय का क्षयोपशम अलग अलग है। एक समय ज्ञानावरणी कर्म का अलग उदय था, दूसरे समय ज्ञानावरणी कर्म का अलग उदय था, तीसरे समय ज्ञानावरणी कर्म का अलग उदय था, तो क्षयोपशम अलग अलग है। जैसा क्षयोपशम होता है वैसा विषय ज्ञान का विषय बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कभी कभी आपने ऐसी चर्चा सुनी होगी कि कही होगी हमने कभी पहले पिछले वर्षों में, इसको जाना, जिस समय मैं इसको जान रहा हूँ उस समय चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म के इस पुस्तक आवरणीय कर्म का क्षयोपशम था, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। हर तरह के कर्म अलग अलग है महेंद्र भाई, पुस्तक ज्ञान का विषय बने तो पुस्तक आवरणी कर्म के क्षयोपशम से, मोबाइल ज्ञान का विषय बने तो मोबाइल आवरणीय कर्म के क्षयोपशम से, समझ में आ रही है बात? कौन सी वस्तु आपके ज्ञान का विषय बनेगी और कब तक ज्ञान का विषय नहीं बनेगी? और सुनो मार्मिक बात, कब तक ज्ञान का विषय नहीं बने? जब तक उस ज्ञान उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है,
व्यवस्था चलती है,
वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है इसलिए वो वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। कई बार ऐसा होता है अलमारी है चालू है, हाँ लो बैठरी है, कोई बात नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप गए कहीं और वहां जाकर के आपको कोई चीज निकालनी है, तलाशनी है, अलमेरा के पास गए और अलमारी में से हमारे को कोई चीज निकालनी है, एक छोटी सी चीज की और मिल नहीं रही है हमारे को, हमने खूब कोशिश किया मिला नहीं, मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, रखी तो यही थी फिर अलमारी में मिल नहीं रही है। फिर हमने वहां से कॉल किया, क्या हमने वहां से कॉल किया अपने स्पाउस को और उनसे पूछा कि साहब वो कहाँ रखी है, वो अलमारी में ही तो रखी थी, मिल नहीं रही है मेरे को, कहाँ रखी है? तो फोन पर मोबाइल पर उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? वहीं रखी है अलमारी में। उन्होंने कहा मिलती नहीं है, बोले देखो वहाँ वो जो पेपर बिछाया है उसके कॉर्नर पर राइट साइड में वहाँ रखी हुई है, मुझे दिख रही है। कौन कह रहा है?
सामने वाला
जो फोन पर है, मोबाइल पर है, वो कह रहा है मुझे दिख रही है, और ये कहता है नहीं नहीं यार मुझे नहीं दिख रही है, और फिर दो मिनट बाद में कहता है हाँ दिख गई। तो अब तक क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, और अब क्यों दिखी? कि उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया। तो कौन सी वस्तु ज्ञान का विषय बने ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर करता है। ये बात न्याय के ग्रंथों में आचार्यों ने लिखी है, क्या स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। स्वावरण क्षयोपशम, स्व आवरण, कौन सा आवरण? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनेपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण नहीं, स्वावरण। मुकुंद भाई को देखा तो मुकुंद भाई आवरण यदि है कर्म का उदय तो आप दिखेंगे नहीं, रमेश भाई आपको देखना है, और स्वावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, उदय है सत्संबंधी कर्म का, तो आप दिखेंगे नहीं, ये वस्तु नहीं दिखेगी। हर वस्तु संबंधी आप समझ लो ज्ञानावरणी कर्म कितने प्रकार के हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण रूप ज्ञानावरणी कर्म हो गए। तो शिष्य ने तुरंत जवाब दे दिया, एक ज्ञान की पर्याय दूसरे ज्ञान की पर्याय से अलग इस वजह से है क्योंकि दोनों पर्यायों में ज्ञानावरणी कर्म का उदय अलग अलग है, इसलिए अलग अलग है। तो हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ज्ञानावनी कर्म तो परद्रव्य है, क्या परद्रव्य है, जड़ है, कर्म है, माने कर्म कुछ भी करे और जीव का ज्ञान कम ज्यादा हो जाए, ये क्या बात है? ये बात कुछ हृदय से जच नहीं रही है। यदि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, चार प्रकार के अभावों में चौथे नंबर का अभाव अत्यंत अभाव और नास्ती सर्वोपी संबंध है, दो द्रव्यों का एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के कारण ज्ञान का क्षयोपशम कुछ कम ज्यादा हुआ, ये कहना बराबर नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म की वजह से कम जानने में आया, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्यादा जानने में आया, ये तो समझ लो आप दो द्रव्यों की भिन्नता को नहीं पहचानने से ऐसे कथन हुए। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म में होता है और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है। निमित्त निमित्तिक संबंध होगा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्ञानावरणी में और आत्मा का परिणमन आत्मा में, ऐसा नहीं है कि वो उसका कर्ता हो जाए। अरे सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता है, लेकिन क्या सूर्य की किरणें कमल को खिलाती है? सूर्य की किरणें कमल को कैसे खिलाए? खिलने की उसकी अपनी योग्यता है। ये योग्यता की बात यदि समझ में आए तो ये सार्थक है अपना पढ़ना। हर वस्तु की योग्यता समझ में आए तो हम कह रहे हैं कि चलो वो ज्ञानावरणी कर्म से नहीं हुआ काम, क्षयोपशम से नहीं हुआ, तो वो पर्याय अलग क्यों हुई? बोले उस पर्याय की उत्पत्ति अपने स्वतंत्र षटकारक से हुई है और उस पर्याय के अपने निजी अविभागी प्रतिच्छेद स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र है निजी अविभागी प्रतिच्छेद, इस अपेक्षा से यदि बात की जाए, स्वतंत्र अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से यदि बात की जाए, स्वाधीन है उनका परिणमन, तो क्या ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है? अब ज्ञान पर्याय को देखो तो गे से मत देखो, ज्ञान पर्याय को देखो तो ज्ञायक से देखो, तो आपको दिखाई देगा उपयोग में उपयोग और क्रोध नहीं है उसमें, क्योंकि क्रोध नाम के अंश वो विकारी अंश है और ज्ञान ये स्वभाव का अंश है। तो स्वभाव को देखोगे तो विकार नहीं दिखेगा। गेय से भिन्न ज्ञायक को देखो, ज्ञान में झलकने वाले गेयों को मत देखो। इतनी बात कर चुके हैं अपन, दो तीन दिन पहले भी चर्चा हुई है अपनी बहुत इस विषय में। मत देखो, दर्पण जो दिखाई दे रहा है ना, झलकन को मत देखो, अंदर जो चीजें प्रतिबिंब बन रहे हैं प्रतिबिंबों को मत देखो, खाली ज्ञान का अनुभव करो, बस ये भेद विज्ञान चलने दो। ये भेद विज्ञान की धारा, ये जो भेद विज्ञान की धारा चल रही है, ये अविरल रूप से जब ये धारा चलती रहेगी तो राग का रस टूट जाएगा और निर्विकार चैतन्य का रस प्रकट होगा, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। ये आत्मा की अनुभूति का उपाय है। एक दर्पण के सामने एक कुत्ता आ गया गलती से। अब जब दर्पण के सामने कुत्ता आ गया तो क्या होगा बताओ?
भौंकने लगेगा
पक्का?
पक्का।
दूसरे कुत्ते को देख करके, और इधर से ये कुत्ता भौंकता है तो सामने से क्या होगा? जवाब मिलता है, सामने वाला कुत्ता भी भौंकेगा। कौन सा वाला? मिरर वाला। और उसको भौंकता देख करके और भौंकता है, और ये और भौंकता है तो वो और भौंकता है, तो इसको और तेज गुस्सा आता है, ये और भौंकता है, फिर क्या होगा बताओ? कौन हारेगा दोनों की लड़ाई में? ये भौंकता रहता है और भौंकते भौंकते इसके प्राणांत हो जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, थक हार करके बेहोश होकर के पड़ जाता है। ऐसी हालत हमारी भी है, झलकने वाले गेहूं को देख करके भोंकते हैं, ये अच्छा, ये खराब, ये बहुत अच्छा है, ये तो मेरा हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज, इसको देख करके तो मजा आ गया, टीवी की स्क्रीन पर देख देख करके मजे करता रहता है। ये कह रहे हैं स्क्रीन पर झलकने वाले पदार्थ और स्क्रीन वो पर्दा, ये दोनों भिन्न भिन्न है। अब तू पर्दे को नहीं देखता और झलकने वाले पदार्थों को देखता है, ये तेरी अज्ञानता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर्दा कौन से कलर का है? कलर्ड दिखाई देने पर भी चलती हुई पिक्चर के काल में वो पर्दा कौन से कलर का है? व्हाइट ही है वो। कलर्ड चित्र झलकते हुए भी वो पर्दा रंच मात्र भी कलर्ड नहीं हुआ। क्या चमत्कार है, दिख रहा है कलर्ड और वो कलर्ड दिखने पर भी कलर्ड नहीं हुआ। क्या वो मिरर घीयों को झलकाते हुए भी घी रूप बिल्कुल नहीं हुआ? तो फिर घी पदार्थ झलक तो रहे हैं, ये झलक रहे होंगे, ये तो उनका स्वभाव है। आप यदि ये कहो कि नहीं साहब मुझे उस दर्पण का निर्मल स्वभाव देखना है, तो इसमें से झलकने वाले सारे पदार्थों को हटाओ, मुझे ज्ञान का ज्ञाय स्वभाव देखना है घेय से निरपेक्ष, तो सारे घेयों को निकाल दो, मैं सिर्फ ज्ञायक को देखना चाहता हूँ, सब ज्ञायक दिखेगा। बोलो उपाय क्या है, पॉसिबल है? ज्ञान की पर्याय तो उत्पन्न हो लेकिन उसमें घेय नहीं हो।
नहीं,
नहीं तो होगा ही, चाहे पर घेय हो चाहे स्वगेय हो, घेय के बिना कैसे होगा बतलाओ। मैं कहता हूँ उस मिरर में से झलकन कैसे बंद हो जाएगी? नहीं नहीं साहब कुछ नहीं दिखेगा, इसके आगे पर्दा लगा दो। अब तो नहीं झलक रहा कुछ भी, अखबार लगा दिया हमने उसके आगे, न्यूज़पेपर लगा दिया, बोलो अब तो कुछ नहीं झलक रहा है उसमें मिरर में? भाई साहब पर्दा लगेगा तो पर्दा झलकेगा। न्यूज़पेपर लगा दिया चारों तरफ से पैक कर दिया तो अब क्या झलकेगा? अभी भी उसका झलकने का स्वभाव बराबर बना हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो झलके नहीं, कभी झलकाना बंद कर दे। इसी तरह से ज्ञान पर्याय में ये पदार्थ सदा काल झलकते रहते हैं, ऐसा ही पदार्थों का स्वभाव है। लेकिन उस काल में भी आपको उस दर्पण को देखना है, गेयों को नहीं देखना। बस समझ लो आप खरीदते समय जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो पद्धति सही पद्धति है। आप खरीदते समय उस मिरर के सामने होने पर भी उसमें झलकते हुए गेयों को देखते हुए भी आप गेय नहीं देखते, आप ये देखते हैं कितनी क्लियरिटी दिख रही है, उसके देखने में कितनी क्लियरिटी है, आप ये देखते हैं इसके अंदर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं धुंधलाहट तो नहीं है, कहीं पानी इधर उधर तो नहीं है इसका, है कहीं समझ लो आप मोटा पतला तो नहीं दिख रहा हूँ, कहीं बेरूप बेरोल तो नहीं दिख रहा हूँ। क्या चीज देखते हैं आप मिरर खरीदते समय, मार्केट से खरीदते समय? क्लियरिटी देखते हैं, गेहूं से निर्णय नहीं करते, उसके झलकाने वाले स्वभाव से निर्णय करते हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं यहाँ ज्ञान में झलकने वाले गेहूं से ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय नहीं होता, ज्ञायक स्वभाव से निर्णय होता है। जो स्वभाव को देखता है वो समझदार है और जो झलकने वाले पदार्थों को देखता है वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? विकार के काल में भी निर्विकारी ज्ञायक दिखे, ये भेद विज्ञान करने की कह रहे हैं। नहीं साहब नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? आखिर विकार है ना, है तो कैसे नहीं दिखेगा? और दिखेगा सामने है फिर कह रहे हो आप मत देखो, ऐसा कैसे होगा? तो ज्ञान पर्याय में ये झलक रहे हैं ना, ज्ञान पर्याय में क्रोध झलक रहा है ना, तो कह रहे हैं क्रोध में क्रोध है और ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान पर्याय में क्रोध नहीं है। ज्ञान पर्याय में झलकते हुए भी कर्म नौकर्म उसमें नहीं है, ये भेद विज्ञान कर हो नहीं सकता। हटाओ आप इनको कि देख ये कभी हटेंगे नहीं और तुझे तेरा काम इनकी मौजूदगी में ही करना पड़ेगा। समझ में आती है कुछ बात है? ये कहता है पहले स्त्री पुत्रादिक को हटाओ तो मेरा राग टूटे। आचार्यों ने कहा कि भैया तू मोह छोड़, मिथ्यात्व छोड़, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? हटाओ इनको, संयोगों को हटाओ, परद्रव्य को हटाओ, शरीर को हटाओ। जब तक शरीर बना रहेगा तब तक शरीर के प्रति राग रहेगा कि सुन शरीर तो केवल यानियों के भी रहता है। शरीर बना रहे फिर भी राग नहीं हो, परिवार बना रहे फिर भी राग नहीं हो, ये क्या करें, क्या उपाय है? कि यही उपाय है कि इनके बीच में रहते हुए भी ऐसे रहो जैसे नहीं रह रहे हैं। मुक्ति का उपाय क्या है जो बतला दिया था उन मुनिराज ने और समझ लिया था उस पैरट ने, जाने ना दो तीन दिन पहले बात की थी हमने, उनके बीच में रह रहे हैं लेकिन ऐसे रहो जैसे अलिप्त बन करके। भरत जी घर में ही वैरागी, दुनिया को दिख रहा है 96,000 रानियों के बीच में है, दुनिया को लगता है राजपाट में है, महल में है, दुनिया को लगता है 6 खंड की विभूति जीतने के अंदर लगे हुए हैं, दुनिया को लगता है देखो आप दिग्विजय के लिए निकल गए। लेकिन भैया ज्ञानियों की अंतरंग स्थिति क्या होती है? ज्ञानियों की अंतरंग स्थिति क्या होगी बताओ? वो ज्ञानियों की अंतरंग स्थिति ये बतलाती है कि आप कुछ भी कहो वे अपने स्वभाव से बाहर नहीं रहते। कहाँ रहते हैं बताओ? ज्ञानी कहाँ रहते हैं? स्वभाव में रहते हैं। और अज्ञानी? अज्ञानी तो परद्रव्य में रहता होगा। ज्ञानी तो स्वभाव में रहता है और अज्ञानी? अच्छा, ज्ञानी तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है और अज्ञानी तो शरीर में रहता है। ज्ञानी अपने असंख्यात प्रदेशों में, अज्ञानी भी अपने असंख्यात प्रदेशों में, और क्या कहूँ मैं, निगोदिया जीव भी अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। और सुनो, निगोदिया जीव के भी ज्ञान पर्याय क्रोध पर्याय को से भिन्न है और क्रोध पर्याय ज्ञान पर्याय से भिन्न है। निगोदिया जीव के भी उपयोग में उपयोग है, लेकिन कौन सा उपयोग में उपयोग? वो फर्स्ट नंबर वाला नहीं कि ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में लगी हुई हो, वो वाला नहीं। सेकंड और थर्ड वाला, निगोदिया जीव के भी ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय है और निगोदिया जीव की भी ज्ञान पर्याय सिर्फ झलकाने का ही काम करती है, जानने का ही काम करती है। तीन प्रकार कहे थे हमने, तो दूसरे और तीसरे वाले पॉइंट की अपेक्षा से देखो तो निगोद से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक सभी जीव एक समान है। निगोदिया जीव का कम ज्ञान और सिद्धों का ज्यादा ज्ञान। कम जानो चाहे ज्यादा जानो, क्या फर्क पड़ता है उससे? भाई साहब, ज्ञान का स्वरूप तो सदा काल एक रूप है, इसलिए ये कह सकते हैं अपन कि जो ज्ञान पर्याय है उसको अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो, जो चारित्र पर्याय है उसे अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो कैसी दिखेगी? निर्विकारी दिखेगी। निर्विकारी क्या दिखेगी? जो है सो दिखेगी। क्या मतलब समझ में नहीं आया? है सो दिखेगी।
निर्विकार है वो विकार की अपेक्षा से बोला जाता है।
मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वो चारित्र पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय जिसको आपने वितरागता नाम दिया, जिसको आपने राग नाम दिया, ये पर्व अपेक्ष नाम है, उस पर्याय का असली नाम क्या है? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का असली नाम क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ज्ञान पर्याय, बस। ज्ञान गुण की पर्याय का नाम मति ज्ञान नहीं हो सकता कि नहीं? जब उस ज्ञान की पर्याय को इंद्रियों और मन से प्रवृत्ति रूप देखते हैं तो हम मति ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान क्यों कहते हैं उस ज्ञान पर्याय को? यदि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा की अपेक्षा से देखें जानने को तो अवधि ज्ञान कहलाता है। ज्ञान गुण की तो ज्ञान पर्याय है, वो ज्ञान पर्याय न अवधि रूप होती है न केवल ज्ञान रूप होती है, न मति शुद्ध ज्ञान रूप होती है। तो ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ज्ञान पर्याय। अब हमने कहा श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम बताओ। श्रद्धा गुण की श्रद्धा पर्याय कि साहब मिथ्या या सम्यक, ये तो विषय की अपेक्षा से बात कर रहे हो, इस पर्याय को मिथ्या कहना ये उसका विषय श्रद्धा का विषय। यदि शरीर आदि कहे तो आपने कह दिया ये पर्याय विकारी है, और यदि उस श्रद्धा का विषय त्रिकाली ध्रुव या भगवान आत्मा है तो आपने कहा ये श्रद्धा सम्यक है। ये श्रद्धा को श्रद्धा की दृष्टि से देखो, मिथ्या सम्यक की दृष्टि से नहीं, चारित्र को देखो, चारित्र को देखो। वीतराग के राग कौन सी पर्याय? बोले राग देखते हो ये तो संयोग जनित दिखता ही है, और चारित्र पर्याय के विषय की अपेक्षा से बात करोंगे तो राग दिखेगा। परद्रव्य विषय बनता है ना, पर का अवलंबन किया तो राग कषाय विकार क्रोध आदि दिखेंगे। अब उसी चारित्र गुण की पर्याय को वीतरागी देखो सब तो ठीक है, तो कहा ये भी सही स्वरूप नहीं है, क्योंकि आपने चारित्र गुण की पर्याय को जिसे आपने वीतराग कहकर के पुकारा है ये राग के अभाव की दृष्टि से देखा, इसलिए वीतराग कहने में आया। सच में वो चारित्र गुण की पर्याय वीतराग नहीं है, चारित्र गुण की तो चारित्र पर्याय होती है, उसे तरागी देखना यदि परद्रव्य की सापेक्ष कथन है तो उसे वीतरागी देखना भी राग के अभाव की दृष्टि से देखने वाला कथन है। उसी चारित्र गुण की पर्याय के बहुत सारे एंगल हैं, क्षमा मार्दव आर्यव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये किसकी पर्याय है बताओ? ये कौन से गुण की पर्याय है? क्षमा कौन से गुण की पर्याय है? मार्दव आर्य सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण की ये जो पर्याय है ये 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं कि अलग अलग प्रकट होते हैं? एक साथ ही होते
हैं, लेकिन चारित्र गुण की पर्याय
तो जब चारित्र जितना हो अच्छा हो इतना शुद्ध हो इतना दसों लक्षण सातवीं है ना, तो फिर 10 नाम क्यों दिए चारित्र गुण की एक पर्याय के? भाई साहब उस चारित्र गुण की पर्याय को जब उसी चारित्र गुण की पर्याय में हम कहते हैं क्रोध नहीं है तो बोले क्षमा है, ये जब उसी चारित्र गुण की पर्याय में कहते हैं मान नहीं है उसी में कहते हैं मार्दव है, जब उसी में कहते हैं मायाचारी नहीं है तो कहते हैं आर्जव है, जब उसी में कहते हैं लोभ नहीं है तो शौच है। समझ में आ रहा है? उस वीतराग का पर्याय को देखने के एंगल अलग अलग है, पर्याय अलग अलग नहीं है। तो चारित्र गुण की पर्याय का नाम बताओ कि नाम है चारित्र पर्याय।
ये उनका नेचुरल स्वरूप है,
नेचुरल स्वरूप है चारित्र गुण की पर्याय का मूल स्वरूप है। असत्य पने का अभाव है, असंयम का अभाव है उसमें, हाँ ये सब लेंगे। हाँ आत्मलीनता रूप पर्याय है वो, परद्रव्य से भिन्नता रूप पर्याय है वो, बस उस पर्याय को देखने के अनेक प्रकार के एंगल हो सकते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग है, वस्तु एक ही है, वस्तु को देखने का नजरिया अलग अलग है। आत्मा की चर्चा करो, आत्मा को देखो, प्रदेशों की दृष्टि से आत्मा अलग दिखता है, गुणों की दृष्टि से अलग दिखता है, पर्यायों की दृष्टि से अलग दिखता है। आत्मा अमूर्तिक है या नहीं है बताओ? आत्मा अमूर्तिक है या नहीं है? कैसे है अमूर्तिक? इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता इसलिए अमूर्तिक है। हाँ वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है इसलिए अमूर्तिक है, उसकी अपेक्षा से समझा रहे हो तो अमूर्तिक कहने में आ रहा है। उसकी अपेक्षा से अमूर्तिक पने को समझा रहे हैं, और अमूर्तिक पना आत्मा का एक निजी गुण है जिस गुण को समझाने के लिए इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। इंद्रिय सापेक्ष पना नहीं हो ये उसका अमूर्तिक पना। क्या स्वरूप है भाई, कितनी स्वाधीनता की चर्चा करते हैं, कौन हूँ मैं, ये भेद विज्ञान की जो चर्चा यहाँ करने वाले हैं, उस भेद विज्ञान की पूरी चर्चा का सार क्या है, प्रयोजन क्या है, करें क्यों भेद विज्ञान, ये बता दो आप, हम भेद विज्ञान क्यों करें, ये सुनो, भेद विज्ञान के बिना तो काम ही नहीं चलता, भेद विज्ञान तो हम भी करते हैं, हमारे भी चल रहा है भेद विज्ञान, क्या भेद विज्ञान चल रहा है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं। मंदिर में स्वाध्याय सुनने के पश्चात बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद क्या किया हमने, अपनी अपनी चप्पल पहन ली, ये मेरी है और बाकी सब मेरी नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलने के बाद कि यार ये ज्यादा अच्छी लग रही है तो क्या होगा बता, जिसकी दृष्टि दूसरे के ऊपर है वो दुष्ट है, जिसकी दृष्टि में ये आ गया कि वो ज्यादा अच्छी है तो अपराधी है, चोर है, बेईमान है। लेकिन हम कितना भेद विज्ञान करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी है और ये मेरी नहीं है, और गलती से अपनी जैसी दिखने वाली चप्पल को पैरों में डाल ले तो पैर में डलते ही भेद विज्ञान हो जाता है कि यार ये मेरी तो नहीं है। क्या बराबर चलता है भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान चल रहा है कि नहीं वहां पर, कि बिल्कुल चल रहा है। भेद विज्ञान नहीं हो गए तो अपने घर की जगह दूसरे के घर में घुस जाए, भेद विज्ञान नहीं हो तो अपनी जेब की जगह दूसरे की जेब में हाथ डाल दे, ये भेद विज्ञान नहीं हो तो अपनी चीज की जगह दूसरे की चीज उठा ले, एयरपोर्ट पर बेल्ट में सामान चल रहा है क्या, और उस सामान में से अपने को अपना सामान लेना है तो बराबर क्या होता है बोलो, सारी दूसरी जितनी अटैचियां आ रही है उन अटैचियों को देखना के नहीं देखना,
देखना के मेरा है कि नहीं,
बस इतना ही देखना कि ये मेरी नहीं है। उस बालक के समान जिस बालक की माँ खो गई थी, पता है ना आपको,
मेले में
फिर क्या किया उसने, रोने लगा, वो छोटा सा बालक था, और अब क्या हुआ, पुलिस ने कहा कि खड़ा हो जाए यहीं पे दरवाजे पर, इतनी बड़ी भीड़ में से तेरी माँ खो गई है, पहले तो अनाउंसमेंट किया, नाम पूछा, नहीं पता, ये नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, कौन है, क्या है, कौन सी साड़ी पहन रखी थी, कुछ नहीं मालूम, क्या करें, कैसी दिखती थी कि बहुत अच्छी है, कैसी है तेरी माँ बता तो सही कि बहुत प्यारी है, अरे भैया तुम क्या बताएगा, वो छोटा सा बच्चा, दो चार साल का बच्चा, वो क्या बताए कैसी है, क्या जवाब है बतलाओ। मुझे ध्यान आता है गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, उनकी क्लास में निबंध लिखने के लिए दिया गया, तो जब पढ़ते थे तो माँ के ऊपर निबंध लिखना था, सब बच्चों ने बहुत बहुत लिखा और गांधी जी ने सिर्फ एक वाक्य लिखा, क्या लिखा वाक्य, माँ तो माँ जैसी होती है, सिर्फ एक वाक्य, बुलाया मास्टर जी ने, क्या तो मास्टर जी ने बुलाया, जब कॉपियां चेक करी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी क्या, तुम कुछ लिख नहीं पाए, होशियार तो बहुत हो तुम, सबने देखो कितना अच्छा अच्छा लिखा है, ये कैसी होती है, ये गुरुजी लिखने को तो बहुत लिख सकता था क्या, बहुत उपमाएं देकर के वर्णन कर सकता था क्या, ये पृथ्वी जैसी धीर होती है, सागर जैसी विशाल होती है, इतनी गंभीरता है, ऐसा धैर्य है, और इतना आकाश जैसा विराट हृदय है, बहुत बहुत बातें लिख सकता था, लेकिन क्या कहूँ, मुझे माँ का हृदय, माँ का धैर्य, माँ का प्रेम, इन सब उपमाओं से कई गुना अधिक बड़ा विशाल दिखाई दिया, ये सारी उपमाएं फीकी पड़ती हुई दिखाई देती है, मैं क्या उपमा दूं, तो मुझे तो लगता है माँ तो माँ जैसी होती है, उन्हें किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है, कैसी होती है बताओ, ऐसे आत आत माँ, आपको पता है मैंने दो तीन दिन पहले शाम को चर्चा की थी शाम वाले प्रवचन में, ये आत्मा है, ये आत्मा कैसी होती है, ये तो माँ जैसी है, माने आत्मा तो आत्मा जैसी होती है कि नहीं, कुछ तो बताओ कि आत्मा का स्वाद हलवे जैसा आता है कि कैरी जैसा आता है, आम जैसा आता है, रसगुल्ले जैसा आता है कि खीर जैसा आता है, आत्मा का स्वाद कुछ तो बताओ रमेश भाई, कैसा स्वाद आता है, कैसा आता होगा, नहीं बता सकते भाई साहब, क्योंकि दुनिया में किसी वस्तु का स्वाद उस आत्मा के स्वाद जैसा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई वस्तु के स्वाद की चर्चा हम आत्मा के लिए नहीं दे सकते। चलो आत्मा के लिए तो छोड़ो, मुझे तो मिश्री का स्वाद लेना है और मैंने मिश्री को कभी नहीं देखा, मिश्री का स्वाद लेना है, मिश्री को कभी नहीं देखा मैंने। अब बताओ मिश्री का स्वाद कैसा होता है, मिश्री कैसी होती है, गुड़ जैसी होती है, है? कैसी होगी मिश्री, तो मिश्री जैसी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मुझे कुछ तो बता दो कि कैसी होती है, क्या वो पता है आपको, वो टेढ़ी खीर, क्या ये दूसरी उपमाएं देने से क्या गड़बड़ी हो जाती है। एक अंधे व्यक्ति थे, क्या सूरदास जी थे, उनको किसी अपने मित्र ने अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया, और जब अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया तो वो पहली बार गए थे वहाँ, और आज तक कभी उन्होंने खीर खाई नहीं थी, और मित्र ने बनाई खीर, क्या खीर बनाई मित्र ने, तो कहा कि भैया बुलाएगी लोग इसमें है प्याले में, कैसी है, क्या होती है ये खीर, क्या होती है कि खीर नहीं जानते तुम, कि नहीं खीर तो मैंने कभी नहीं देखी, कि कैसी होती है खीर ये तो बताओ, कि खीर अब कैसी बताऊं इसको यार, अभी अंधा व्यक्ति है, इसको खीर किस तरह की बताऊं, बताओ, बोले खीर सफेद होती है सफेद, अब वो जन्म से अंधा व्यक्ति उसने सफेद भी नहीं देखा, बोले सफेद कैसी होती है ये बताओ, इसको सफेद कैसी बताऊं, सफेद कैसी होती है, सफेद कैसे समझाया जाए, उन्होंने कहा सफेद होती है बगुले जैसी, बोले बगुला कैसा होता है, बगुला भी नहीं देखा उसने, यार ये अच्छी समस्या है, अब उसको कैसे समझाऊं बगुला कैसा होता है, तो एक काम करो तुम्हारा हाथ दो मैं बताता हूँ, बोले अब इसको थोड़ा इशारे से ही समझाना पड़ेगा तो समझ में आएगी, ऐसे तो नहीं समझ में आएगी, पूछना क्या था समझना क्या था उस व्यक्ति को, खीर के बारे में समझना था, अंधा व्यक्ति था, जन्म से अंधा व्यक्ति था, दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए गया, खीर बनी, खीर का नाम नहीं सुना था, खीर को पहचानता नहीं था, कभी उसने देखा नहीं था क्योंकि जन्म से अंधा व्यक्ति था, पूछा मित्र से कि क्या बनाया, बोले खीर बनाई है बहुत मजा आएगा तुम्हें, कि कैसी होती है पहले ये बताओ, बोले सफेद होती है, कि सफेद नहीं समझ में आ रहा मेरे को, सफेद कैसी होती है, सफेद नहीं पहचानने में आ रहा, बोले सफेद होती है बगुले जैसी, बोले बगुला कैसा होता है ये नहीं समझ में आ रहा, उसने सर पकड़ लिया, यार कैसे समझाऊं कैसी होती है, अब बगुला कैसा होता है ये कैसे समझाऊं, तो बोले तुम्हारा हाथ दो, तो उनका हाथ पकड़ा और हाथ में दिखाया ऐसे, ये देखो ऐसा होता है बगुला, ऐसा होता है क्या, तो उसने अंधे व्यक्ति ने ऐसे हाथ लिया, ऐसे तो ऐसा होता है बगुला, और ऐसी होती है खीर, बहुत टेढ़ी खीर है, ये तो मेरे गले में अटक जाएगी, मैं नहीं खा सकता, टेढ़ी खीर, जानते हैं किसी भी कार्य की अत्यंत जटिलता को बतलाने के लिए टेढ़ी खीर कह दिया जाता है, मैं कहता हूँ उस खीर के लिए क्या उपमा दी जाए, भाई साहब दूसरी दूसरी उपमाएं दोगे उसके लिए स्वरूप बिगड़ जाएगा, आत्मा को कोई दूसरी उपमाएं देकर के समझाने का प्रयास करोगे आत्मा का स्वरूप विकृत हो जाएगा, आत्मा को किसी की उपमा की जरूरत नहीं है, आत्मा के स्वरूप के लिए तो अनुभव की जरूरत है उपमाओं की नहीं, वेदन करो, फील करो, अनुभव करो, क्योंकि आत्मा अनुभूति का विषय होता है, चर्चा का विषय नहीं होता है। हमने चर्चा का विषय तो बहुत बनाया आत्मा को, लेकिन अनुभूति का विषय कभी नहीं बनाया। अब यहाँ चर्चा का विषय तो बंद हो और अनुभव का विषय बने। कैसे अनुभव होगा भाई साहब? उस बच्चे को नहीं छोड़ रही है, तू अपने स्वभाव को छोड़ करके मूर्ख बना फिर रहा है। नमक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, कि साहब मिल गया तो उसके अंदर घुल गया, कि घुल करके भी उसके अंदर स्वभाव अपना है, निजी स्वभाव है। दूध में चीनी डाली, हिला दी, पूरी तरह से मिल गई। क्या पूरी तरह से मिल गई? अब चीनी का अस्तित्व है कि नहीं? अलग दूध में शक्कर डालने पर, उसमें पूरी तरह से हिला देने पर, बिल्कुल चम्मच से ऐसे निकाल करके देखो, अब शक्कर नहीं आ रही है, पूरी तरह से मिल गई है, तो अब शक्कर का अस्तित्व है या नहीं है? भाई साहब दूध को पीने पर जो मिठास दिखाई दे रहा है, वो मिठास दूध का नहीं है, वो शक्कर की मिठास है। भले ही आप कितना भी कहो कि दूध ज्यादा मीठा हो गया, वचन हमारे क्या निकलते हैं? दूध में मीठा ज्यादा हो गया, मीठा कम है। अरे दूध मीठा नहीं होता है, क्या मीठी शक्कर होती है, दूध में मीठापन नहीं है। जो कभी मीठा नहीं होता वो दूध है। गर्म होता है कि दूध? बहुत गर्म है। दूध गर्म होता है कि नहीं? गर्म दिख रहा है साहब, छू करके देखो। गर्म गर्म घी, घी गर्म होता है कि नहीं? घी गर्म नहीं होता, दूध गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें जो गर्मपना है वो अग्नि का स्वभाव है, वो घी का स्वभाव नहीं है। पता है क्या करना? गरम गरम घी, और आपने सुना अग्नि के संयोग वाले उस घी के बारे में कि घी कभी गरम नहीं होता, छू लिया उसको तो क्या होगा बोलो? जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे घी से जल जाने पर भी उसके घी लगाया जाता है। समझ में आ रही है बात? माने घी का स्वभाव अलग है और उष्ण का स्वभाव अलग है, ये दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव है। इसी तरह से ज्ञान का स्वभाव ज्ञायक है और क्रोध का स्वभाव आकुलता है। दोनों के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। आकुलता में क्रोध का स्वभाव, और ज्ञान का स्वभाव कैसा? ज्ञान का स्वभाव निराकुलता। निराकुल स्वभाव को पहचाने और आकुलता से दृष्टि हटाए तो स्वभाव में दृष्टि केंद्रित होती है और आनंद आता है। ये आनंद प्राप्त करने का उपाय है, ये विधि है भाई साहब आनंद प्राप्त करने की। ये वेद विज्ञान करना पड़ेगा हमारे को। विकल्प जो उत्पन्न होता है वो विकल्प भिन्न है, वो विकल्प राग का काम है, वो विकल्प चारित्र गुण की विकृति का काम है, और उसी विकल्प के काल में जो शांति है वो ज्ञान का काम है। वो शांति विकल्प को नहीं करती, वो ज्ञान कहीं विकल्प का करता नहीं है, वो ज्ञान विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी विकल्प को जानने का ही काम करता है, विकल्प का करता नहीं है। बोलो, ये भेद विज्ञान करते हुए यदि विकल्प से दृष्टि हटती है और उस शांत रस पर दृष्टि केंद्रित होती है तो निश्चित रूप से आत्मा की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। विकल्प को भिन्न जानकर, ज्ञान को भिन्न जानते हुए हम उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पर दृष्टि केंद्रित करने का प्रयास करें और अवश्य ही उसका अनुभव करें। इसी मंगल भावना से मैं बात करता हूँ।